हाँ नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, श्रोताओं, मैं रफी साजा मंच मोबाइल वाणी से आज हम आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ। मेरे साथ सीधे फोन लाइन पर है ज्ञानेंद्र जी, जो सीआईटीयू के मेंबर हैं और एक कंपनी में काम करते हैं बहरोड नीमराना राजस्थान अलवर के डिस्ट्रिक्ट में। और क्या स्थिति हुई है और कितने साथी वहां से निकाले गए हैं और जो ये नया श्रम कानून लेके राजस्थान सरकार आ रही है उसके बारे में क्या कहना है मजदूरों का?
सर, जो है ये मजदूर विरोधी कानून है और राजस्थान सरकार जो है मजदूरों के प्रति उदासीन रवैया अपना रही है।
क्या लगता है कि जिस तरीके से ये 8 घंटे का कानून लेके आ रहे हैं कि 8 घंटे का काम दिया जाएगा और सबको पे स्लिप देना अनिवार्य होगा, ये तो मजदूरों के हित में होगा, और इसके इसका विरोध क्यों है? या 8 घंटे के अलावा उनको ओटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सबको लेके क्या मजदूरों में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है?
सर, ये अनिश्चितता की बात हैगी कि ये 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम की जो बात हो रही है तो वो एक उचित नहीं है, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी।
जी, तो किन किन मुद्दों को लेके राजस्थान सरकार का ये कानून के आप लोग खिलाफ हैं और क्या लगता है कि केंद्र सरकार का जो श्रम कानून है और राज्य सरकार जो मखौटा तैयार कर रही है वेज कोड का राजस्थान, तो उसमें क्या मुख्य अंतर नजर आ रहा है और कैसे इसको यूनियन आपका इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है? और
इस जो नए श्रम कानून है वो अस्पष्ट है, वो पूर्ण रूप से जो है एक पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ धकेल देते हैं मजदूरों का, जिसमें कोई भविष्य नहीं है, सुरक्षित रोजगार नहीं है उनका, ना उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।
तो राजस्थान में ऐसे कौन से आपको कानून लग रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का फेवर कर रहे हैं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है?
सर, जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही ढीला रवैया श्रम कानून जो प्रशासन है उसका जो है बहुत ही ढीला रवैया है, वो पूर्ण रूप से जो है जो कंपनी है या जो पूंजीवाद व्यवस्था है उसके हितकारी हैं वो सब।
और कितने मजदूर साथी आप की फैक्ट्री से जो बहरोड में है, कितने मजदूर साथियों को निकाल दिया गया है और क्यों निकाला गया है, क्या कारण बताया जा रहा है?
सर, जो है हमारी कंपनी में अब से पहले जो है लगभग यहाँ पे 550 आदमी काम करते थे और जो धीरे धीरे करके उनको सबको बाहर कर दिया गया, जो पीछे लॉकडाउन हुआ उसका बहाना देके सबको बाहर कर दिया गया। पहले जो रेगुलर नहीं थे उन लोगों को बाहर किया और उसके बाद में जो है कंपनी को वित्तीय घाटा का वो हवाला देके, और जो है हम अभी 65 आदमी थे मजदूर जो है और स्टाफ था लगभग 60-65 ही, तो लगभग 130 आदमियों को बाहर कर दिया गया।
तो राज्य सरकार के कानून के तहत क्या प्रावधान थे जिससे आपको फायदा मिलने वाला था और आपको निराशा का सामना करना पड़ा? क्या राज्य सरकार इसके तहत मजदूर को कोई मुआवजा या कुछ फायदा पहुंचा रही है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको?
सर, अभी हमारा जो है 12 मार्च से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और अभी तक तो जो है प्रशासन का रवैया जो है उदासीन है, ढुलमुल नीति अपना रही है प्रशासन जो है, और राजस्थान सरकार जो है कुछ खास वो नहीं कर रही है।
तो किससे संपर्क किया अभी तक आप लोगों ने और क्या प्रशासन का क्या वहां से जवाब आ रहा है और क्या ये कोर्ट में जा चुका है ये केस की या अभी प्रशासन के हाथों में है, न्यायालय तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा?
सर, हमने जो है इसके बारे में हम श्रम अधिकारी अलवर और जयपुर और श्रम मंत्री राजस्थान, हम जो है तीनों जगह ज्ञापन दे चुके हैं और जो मीडिया के जरिए भी हम इसका तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं कि भाई हमें सहयोग दीजिए।
तो अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है, ये जितने निकाले गए हैं सभी ठेका मजदूर हैं या परमानेंट को भी कंपनी ने बाहर किया है?
जी सर, हमारी मेरी सर्विस सर मेरी खुद की सर्विस जो है यहाँ पे 23 साल की हो चुकी है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर जो है बाहर कर दिया गया है। जो श्रम कानून की 300 लोग होंगे, 300 से कम पे यूनियन नहीं बनाएंगे, तो ये पूर्ण रूप से मजदूर विरोधी जो है कानून है और मजदूरों का तो गला घोटा जा रहा है बुरी तरह से।
राज्य सरकार क्या, जो केंद्र सरकार ने 44 लेबर कोड को, श्रम कानून को 4 कोडों में जो है सीमित किया, और इसके बाद राज्य सरकार के जो कानून राजस्थान में लेके आ रहे हैं, तो उसमें ऐसे कौन से अंतर हैं जिससे बचा जा सकता है, मजदूर को कुछ फायदा मिल सकता है? कौन से कानून आपको बेहतर लग रहे हैं कि राज्य सरकार के कानून ज्यादा अच्छे हैं मजदूरों के लिए केंद्र के?
सर वो जो है राज्य सरकार के कानून जो है पहले जो थे उसमें जो 44 कानून थे उसमें मजदूरों के लिए कुछ था, लेकिन ये 4 कानूनों में तो बिल्कुल बांध दिया है, जो अस्पष्ट है एकदम, वो भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, तो उसमें वो उसको घुमा के और उसका कुछ भी अर्थ निकाल देते हैं।
तो राज्य स्तर पर क्या कानूनों की, श्रम कानूनों की अनदेखी की जा रही है? क्या राज्य सरकार भी उसी ढर्रे पे चल रही है जैसा कि केंद्र सरकार?
बिल्कुल सर राजस्थान का तो मैं पिछले 22-23 साल से देख रहा हूँ, जो श्रम कानून है उनको कोई मतलब कंपनी जो है उनको एकदम ताक पे रख के अपना काम कराती है।
तो आगे की क्या रणनीति होगी इन तकनीकी भाषाओं में, जो कानूनों की भाषा है उसको एक आम मजदूर तक पहुंचाने के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है, और क्या लगता है कि ये जितने कानून बनाए जा रहे हैं क्या मजदूरों को परेशान करने के लिए हैं, ताकि उनको इस भाषा समझ में ना आए और साफ साफ कुछ समझ में ना आए और वो चक्कर काटते रहें? क्या लगता है आपको?
सर जो है मुझे लग रहा है कि इसमें कि ये जो है एक शोषणकारी कानून है ये, और मजदूरों को जितना और चूसा जा सकता है उसमें ये पूर्ण रूप से सहयोग ही करेंगे।
और पे स्लिप जो आपके यहाँ काम करते हैं लोग, उसमें पे स्लिप को लेके क्या है? क्योंकि पे स्लिप देना, अभी राजस्थान की सरकार जो मसौदा तैयार किया उसमें पे स्लिप देना अनिवार्य होगा, ये नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी एम्प्लॉयर की कि वो एम्प्लॉई को पे स्लिप दे, तो क्या लग रहा है कि पे स्लिप अभी भी मजदूरों को मिलती है या अभी भी किसी के पास ज्वाइनिंग लेटर है या नहीं है, या क्या स्थिति है? आपने इतने सालों तक काम किया है
सर, जो परमानेंट मजदूर हैं उनको तो पे स्लिप दी जाती है, लेकिन आज भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो मजदूर हैं उनको कोई पे स्लिप नहीं दी जाती है।
और जो पे स्लिप दी जा रही है आपको, और जो परमानेंट नहीं है या ठेके पे है उनको पे स्लिप न देने का क्या कारण बताया जाता है? ठेकेदार क्या ऐसी बात कहता है, और कितने प्रतिशत आपकी कंपनी में ठेका मजदूर हैं, परमानेंट कितने हैं?
सर हम जो है परमानेंट थे हम 65 आदमी, और बाकी लगभग जो है 400-450 आदमी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही थे, और उनमें से किसी को भी जो है पे स्लिप नहीं दी गई। पे स्लिप ना देने का कारण ये रहता है कि उनको, मजदूरों को ये पता होता है फिर कि हमारे उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकते यार, तो वो जो लोग आते हैं उनकी जो हाजिरी जो है कम कर देते हैं, और ESI फैसिलिटी वगैरह जो है वो भी नहीं देते हैं। ESI जो कार्ड जो मिलना चाहिए लोगों को, जो उनका बेसिक जरूरत है वो भी नहीं देते हैं, क्योंकि उससे वो बच जाते हैं, जो ठेकेदार है वो भी बच जाता है और कंपनी भी बच जाती है उससे। एक एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो उसके साथ बेईमानी करने से बचते हैं।
अच्छा, ओवर टाइम का क्या रेट जो ठेके पे हैं कैजुअल हैं उनके लिए रेट क्या होता है ओवर टाइम का? सिंगल रेट से दिया जाता है या डबल रेट से?
सर वो सिंगल दिया जाता है सर, हम लोग परमानेंट है सर, हमें ही सिंगल दिया जाता है। हमने उसके लिए जो है श्रम अधिकारी अलवर को ज्ञापन दिया था 2013 में, लेकिन वो आज तक हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, ना श्रम अधिकारी देता ना प्रशासन देता है।
तो क्या लगता है कि ये डबल रेट का जो कानून है वो क्यों लागू नहीं हो पाता ओवर टाइम का? क्या इसमें ऐसी त्रुटियां हैं या इसमें कमियां हैं कि एक मजदूर को ये प्रूफ करना कि वो ओवर टाइम उसने किया लेकिन उसको सिंगल रेट का पेमेंट दिया गया, ये प्रूफ करना कितना मुश्किल है? क्या कानून में ऐसी बचने की रास्ते हैं कि जिससे जो है एम्प्लॉयर या पूंजीपति इससे बचते हैं? क्या लगता है?
जो सर जो श्रम अधिकारी और कंपनी का जो HR डिपार्टमेंट है ये उनकी मिली भगत का परिणाम होता है सर, उसका खमियाजा जो है मजदूर को भुगतना होता है। तो अगर शर्म अधिकारी उसके ऊपर हस्तक्षेप करे तो ये बिल्कुल खत्म हो सकता है।
तो क्या लगता है कि प्रूफ करना या सबूत हासिल करना कि उसको सिंगल रेट से मिला ये कितना मुश्किल हो जाता है क्यों लोगों ने इसको दरकिनार करना शुरू कर दिया, अगर जबकि डबल रेट का एक प्रावधान है, एक नियम कानून है, जो कानून की बात की जाती है कि सब कुछ कानून से चलेगा, तो उस स्थिति में ये कानून होते हुए भी सिंगल रेट पे मजदूर पैसा लेने को मजबूर है, क्यों है ये ऐसा?
सर वो मजबूरी है कि क्योंकि उसमें शरम अधिकारी जो है कोई एक्शन नहीं लेता, उनकी मजबूरी यही है कि शरम वो लेने के जो है उनके पास अंतिम जो रास्ता होता है वो कानून अपना अधिकार है, और कानून अधिकारी के लिए उसके पास जो शरम अधिकारी के पास जाना होगा, शरम अधिकारी कोई सहायता नहीं करता, वो उसके ऊपर कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करता उसके अंदर।
तो क्या कोर्ट में जाके क्या उम्मीदें कुछ बढ़ती हैं, या श्रम विभाग से ही उम्मीदें टूटती हैं, या श्रम लेबर कोर्ट में जाने से क्या फायदे मिल सकते हैं, क्यों लोग जाने से लेबर कोर्ट बच रहे हैं जब ऐसा नियम है?
लेबर कोर्ट में जाने का मतलब है कि जो है फिर एक चीज को प्रूव करने के लिए, या ये समझो कि 1,000 के लिए 1,000 जिसका ओवर टाइम है उसको लेने के लिए वो 20,000 रुपए जो है लेबर कोर्ट में खर्च करे तो उसको 1,000 रुपए मिलेंगे, वो भी 10 साल या 15 साल बीत जाएंगे।
धीमी जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी नुकसान
लचर, ये जो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था लचर व्यवस्था सर इसको हम कह सकते हैं कि सही समय पे अगर न्याय ना मिले तो सर वो एक अन्याय का ही वो अन्याय ही कह सकते हैं हम उसको।
धन्यवाद ज्ञानेन्द्र जी। जैसा कि ज्ञानेन्द्र जी बता रहे थे कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनायर, न्याय अगर देर से मिलता है तो वो इनकार के ही बराबर है। और इन सब खबरों के साथ आप बने रहिए, सुनते रहिए साझा मंच। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड ज्ञानेन्द्र जी, धन्यवाद।